वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
भगवान कहते हैं कि अगर हमको अपने अहंकार को मिटाना है तो उसका तरीका क्या है। कहते हैं कर्मणि अकर्म व पश्येत। कर्म के अंदर अकर्म देखो और अकर्म के अंदर कर्म देखो। क्या मतलब हुआ इसका कि जब हम कर्म करते हैं, देखो कर्म को मना नहीं किया है, हमको अपने अहंकार को ख़त्म करना है। करने का तरीका क्या है, कर्मणि अकर्म पश्येत। कर्म करते रहेंगे मगर हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, अकर्ता आत्मा पर। आत्मा कोई कर्म नहीं करता। कर्म करते रहेंगे मगर ध्यान कहाँ होगा, आत्मा पर होगा। आत्मा क्या है, अकर्ता। आत्मा कोई कर्म नहीं करता। और अकर्मणि, अगर मान लो हम चुप से बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं, हमने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, हाथ पैर को रोक लिया और कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उसमें कर्तृत्व आ गया। कर्म जब कर रहे हैं तब जो है कर्तृत्व को हटाना है, इसलिए ध्यान अकर्ता आत्मा की तरफ ले जाना है। आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, कर्म करेंगे मगर ध्यान आत्मा पर, कर्तृत्व शिथिल होगा। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी कर्तृत्व आ जाता है, तो उस टाइम में कर्तृत्व के प्रति हमको सजग रहना है, कर्तृत्व को हटाना है। हम बाद में जाके देखेंगे कि कर्म अकर्म विकर्म का रहस्य इतना ही है कि आपको कर्तृत्व वहां से हटाना है। कर्म के अंदर दोष नहीं है, जितना दोष है कर्तृत्व में है। जो करता है वो भोक्ता बनता है। अगर हम करता ही नहीं रहे तो हम भोक्ता बनेंगे क्या?
नहीं।
आत्मा करता है तो आत्मा क्या भोक्ता बनेगा?
नहीं।
तो हमको अकर्ता तक पहुंचना है। कहां से? 100% करता है हम अभी। तरीका क्या है, सीधा एक जंप में उस पार चले जाएंगे? नहीं। क्या करना होगा? तो बोलते हैं आपको करण बनना होगा। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट बनना होगा, भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना होगा। तो जो ये चीज को देखता है, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में जो कर्म को देखता है, उसको यहाँ पर भगवान कहते हैं सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म की। उसने सब जो करना था कर लिया, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं जो आदमी कर्म में अकर्म देखता है या अकर्म में कर्म का दर्शन करता है, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में देखा था 19वें श्लोक में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसने सब कुछ जो आरंभ किया, आरंभ जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। हर कर्म आरंभ होता है, तो यह समारंभा का मतलब होता है कर्म। तो जो भी वो कर्म करता है वो कैसा है, काम संकल्प वर्जिता, उसकी अपनी कामना नहीं है। और कामना का कारण संकल्प है पहले, तो संकल्प भी नहीं है उसका, अपनी कामना भी नहीं है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानं, और उसके जो है कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए हैं। तम आहु पंडितम बुधा, ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। किसको पंडित कहते हैं, जिसने अपने कर्म को ज्ञान से दग्ध कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि भई ये ज्ञान क्या है, कैसे दग्ध हुआ। तो अब भगवान जो है दो किस्म के तत्ववेत्ता जो ज्ञानी हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। दो किस्म के ज्ञानी, ऐसे एक ज्ञानी होता है ज्ञान के बाद में बहुत काम करता है, प्रवृत्त है, और एक दूसरा ज्ञानी होता है वो ज्ञान के बाद में निवृत्त हो गया, वो केवल भिक्षा के लिए जाता है और कोई काम नहीं करता है। आपको बहुत से ऐसे उदाहरण संतों के मिलेंगे, कुछ संत बैठे रहते हैं कुछ नहीं करना है, और दूसरे संत प्रवृत्ति मार्ग है, बहुत काम करते हैं। तो अभी जो है हम देखेंगे 20वें नंबर श्लोक के अंदर में जो बहुत प्रवृत्ति वाला काम करता है उसकी चर्चा की है।
त्यक्त्वा कर्म फला संगम
नित्य तृप्तो निराश्रयः
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः
त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्य तृप्तो निराश्रयः
नैव किंचित करोति सह,
वो कुछ नहीं करता है, किंचित कुछ भी नहीं कर रहा है। ये उस ज्ञानी की बात हो रही है, उस तत्ववेत्ता की बात हो रही है जिसको ज्ञान हो गया है और बहुत कर्म करता है, बहुत कर्म करता है। भगवान कहते हैं वो कुछ भी नहीं करता, नैव किंचित करोति सह, उसके सारे कर्म क्या हो गए, अकर्म हो गए। कब हमारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, जब हमारे में कर्तृत्व नहीं होगा। ये ज्ञान उसको कहाँ मिला, 18वें श्लोक में मिला है। क्या लिखा था वहाँ, कि उसके अंदर कोई भी कर्तृत्व नहीं है। कर्म के अंदर में अकर्म को देखना, अकर्म को देखना मतलब आत्मा को देखना, आत्मा को देखना मतलब अकर्ता को देखना, तो अहंकार वहां चला गया। और अकर्मणी में कर्म देखना, ये उसको ज्ञान मिला है। उसको ऐसा नहीं कहा कर्म नहीं करना है, कर्म बहुत करना है मगर कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। तो हमने आगे ये देखा है कि 14वें श्लोक में कि भगवान भी बहुत कर्म करते हैं मगर उनके अंदर कर्तृत्व नहीं है और फल की आकांक्षा नहीं है, फल की स्प्रिहा नहीं है। और वहाँ ये भी कहा कि अगर हम भी ऐसे ही कर्म करें बिना कर्तृत्व के और बिना फल की आकांक्षा के, तो हम भी हमारे सारे कर्म भी अकर्म हो जाएंगे। हमको ये टेक्निक समझनी है कि हमारे कर्म को हम कैसे अकर्म कर दें। तो अकर्म अगर हो जाएंगे तो फिर हम उसके कोई फल के भागीदार नहीं है। तो ये ज्ञान है, तो इसका ज्ञानी का ध्यान कहाँ रहता है, अकर्ता आत्मा में। कर्म बहुत कर रहा है मगर उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, अकर्मार्थ, वहाँ पर वो, उसका मन वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, तो उसके सारे काम जो करता है कैसे करता है, देखो अभी समारंभा आगे वाले श्लोक में हम आ गए। पहले हमने देखा 14वें श्लोक में बताया कर्तृत्व नहीं है, फल की स्प्रिया नहीं है। 18वें श्लोक के अंदर ये बताया कि कर्म के अंदर अकर्म देखो और अकर्म के अंदर कर्म देखो, ये आपको हमने बता दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके सारे कर्म कैसे हैं, बिना काम और बिना संकल्प के हैं, बिना काम और संकल्प के हैं। उसकी अपनी कामना नहीं है, उसको अपने को कुछ नहीं पाना है। हम काम करते हैं कैसे, अपनी खुशी के लिए। वो खुश होकर दूसरों के लिए काम करता है, देखो ये फर्क है। वो खुशी में दूसरों के लिए काम करता है, ये उसका फर्क हो गया। उसमें उसने अपने ऊपर पूरा नियंत्रण किया हुआ है, उसके अपने कोई काम कर, यही ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि क्या, बिना कर्तृत्व के बिना फल की आकांक्षा, नंबर वन। नंबर टू, कर्म करते हुए अकर्ता की तरफ ध्यान रहना चाहिए। अकर्म के अंदर ख्याल रहे कर्तृत्व वापस तो नहीं आ गया मेरे पास, ये ज्ञान अग्नि है। इस ज्ञान अग्नि से उसने उसको जला दिया है कर्तृत्व को। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, उसके बाद भगवान कहते हैं पहला पाद में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म का फल आसंग को छोड़ दिया। अच्छा, लोग जो है गलत समझते हैं इसको, ऐसी व्याख्या कर लेते हैं कि आप जो है कर्म करो, आपको फल जो है के साथ में फल की इच्छा नहीं करो, या फल का आप कोई संग, फल का संग का मतलब क्या है यहाँ पर। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या हम कर्म करें उसके पहले क्या प्लानिंग नहीं करें। नहीं, जरूर करें, 100% प्लानिंग करें, 100% प्लानिंग करें। कर्म फला आसंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग ना करो, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। जैसे कंपनी प्लानिंग करती है ना, अगले साल में 2020 साल में हम ये करेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे, हैं, इतना हमको प्रॉफिट चाहिए, पूरी करें। नंबर दो, कर्म फल का त्याग नहीं करना है, कर्म फल का त्याग नहीं करना है, कर्म फल के साथ में संग मना किया है। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि आप जो आपको जब मिले पे चेक तो जाके वहां यमुनोत्री में जमा दे दो, ऐसा नहीं कहा। कर्म फल त्याग नहीं कहा है, क्या कहा है, कर्म फल के साथ में आसक्ति नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, कर्म फल के साथ आसक्ति नहीं हो, कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कर्म करते हो उस समय फल की चिंता मत करो। सिंपल, समझ में आया। अगर आप कर्म करने के टाइम में फल की चिंता करोगे तो इसका मतलब है 100% मन आपका कर्म में नहीं है। कुछ पार्ट ऑफ योर माइंड इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर 100% एफिशिएंसी नहीं होगी तो आपका फल 100% नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां कहते हैं तक्त्वा कर्म फलासंगम, हमको कर्म करने के टाइम में फल की चिंता नहीं करनी है, मगर पहले पूरी प्लानिंग करो। जितनी प्लानिंग, आपको कितना कर्म फल चाहिए उसके भी प्लानिंग करो, ज्यादा से ज्यादा कर्म फल की भी चिंता करो, पहले कर लो, मगर जब उसको एग्जीक्यूशन करने जाओ प्लान को, उस टाइम में फल की चिंता मत करो। तो ज्ञानी जो है उसकी चिंता नहीं करता। कैसे किया उसने, नित्य तृप्त निराश्रय, नित्य तृप्त है, संतुष्ट है। हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, हम लोग प्लानिंग किए यहाँ हो पहुँच गए, ना कोई कंपनी संतुष्ट होती है। हर साल उनका जो है बजट, उनका प्रोजेक्शन ऊपर 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 जाता जाता है, कभी संतुष्ट नहीं होते हम। जो भी हमको मिल जाए कभी हमको संतोष नहीं होता, मगर ये कैसा है, नित्य तृप्त है। क्यों नित्य तृप्त है भाई, क्योंकि विषय की कामना नहीं है, उसको कोई कामना विषय की नहीं है। क्यों विषय कामना रहित है, अभी आप बताओ, साइंस है, ज्ञान आ गया है, ज्ञान आने के कारण क्या हुआ, वासना चली गई, अज्ञान चला गया, वासना चली गई, कामना चली गई, कामना चली गई तो क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। अगर हमारे पास में विषय की वासना नहीं है तो हम तृप्त हैं। तो इस तरह से उसकी विषय की कामना नहीं है, निराश्रय, निराश्रय का मतलब हुआ ये नहीं है कि वो घर नहीं है उसके पास में। ज्ञानी जो है निराश्रय है, निराश्रय मतलब घर नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वो पुअर है, दीन है, दयनीय है, ऐसा नहीं है कि ऑर्फन है, ऐसा भी नहीं है। वो किसी पर आश्रित नहीं है। किसी पर आश्रित नहीं है मतलब जगत पर आश्रित नहीं है। किस पर आश्रित है फिर? वो ब्रह्मन पर आश्रित है जो सब चीजों का आश्रय है, है ना। ब्रह्मन जो है वो तो आत्मज्ञानी है ना, उसका मन कहाँ है? आत्मा में है, ब्रह्मन में है सदा। ब्रह्मन कौन है? वो तो आश्रय ऑफ एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सब चीजों का आश्रय है। जिसके पास में इतना बड़ा आश्रय हो वो छोटे मोटे आश्रय के पास में जाएगा? निराश्रय, उसको कोई आश्रय की दरकार नहीं है। वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। हम लोग सब कैसे हैं? स्वतंत्र हैं? नहीं, परतंत्र हैं। आश्रय चाहिए हमें, मगर ज्ञानी निराश्रय हैं। फिर कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि। कर्मणि अभिप्रवृत्त, बहुत काम करता है। हम जिस ज्ञानी की बात अभी कर रहे हैं, ये ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त के बाद में बहुत काम करता है, मगर उसकी अपनी कामना नहीं है, उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं है, क्योंकि उसको विषय नहीं चाहिए। उसको सुख का सोर्स मिल चुका है और वो आउट ऑफ सुख, उस सुख को बांटना चाहता है लोगों के लिए, इसलिए वो बहुत काम करता है। कर्मणि अभिप्रवृत्त, मगर नैव किंचित करोति स, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है। विरोधाभास हो गया ना, बहुत काम कर रहा है और साथ साथ भगवान कहते हैं नैव किंचित करो, तो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ? कर्म करते करते उसके सारे कर्म अकर्म है। कैसे अकर्म हुए? कर्तृत्व नहीं है। क्यों कर्तृत्व नहीं है? वो अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानता है, करण मानता है भगवान के हाथ में। अपने को भगवान के हाथ में करण मांगता है। हमारे गुरुदेव बराबर बोलते थे, वो नारायण जो करवाते हैं करेंगे हम पर। वो अपने को इंस्ट्रूमेंट मानते थे, नारायण की इच्छा हर समय वो ऐसा करते थे। तो दूसरों की खुशी के लिए वो करता है। इसके कर्म कभी भी दूसरे जन्म के प्रेरक नहीं होते। प्रेरक मतलब उसका कॉज नहीं होता। हमारे कर्म दूसरे जन्म के लिए प्रेरक हैं, कॉज हैं। और ज्ञानी के कर्म, इतने कर्म करता है मगर उसके कर्म दूसरे जन्म के लिए कोई प्रेरक नहीं है। देखो, एक आपको उदाहरण देते हैं। बहुत छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का है। जब वो जागता है तो आपने देखा है कितना वो काम करता है, कितने हाथ पांव चलाता है? देखा है कभी आपने? बहुत हाथ पांव वो चलाता है। उसमें कर्तापन नहीं है, उसको उसमें डूअरशिप नहीं है, कर्तापन नहीं है, और कोई फल आएगा ऐसा भी उसको भोग नहीं है। इसलिए उसके अंदर आप कोई स्ट्रेस नहीं देखोगे, टेंशन नहीं देखोगे। कभी नजर आता है बच्चा खेल रहा है? बहुत कर्म कर रहा है। आपको अगर उतना करने बोले, हम लोग तो 5 बार सो के साइकिल ही कर दिया, हो गया। सी हाउ मच इज डूइंग, कितना कर्म करता है, मगर उसके अंदर में कोई कर्तृत्व नहीं है। और जब थक जाता है सो जाता है, फिर उठता है, फिर शुरू हो जाता है। उसके सारे कर्म अकर्म है। सारे कर्म कर्म है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ में भगवान कृष्ण के यहाँ गए। तो उनकी कितनी रानियाँ हैं? 16,008 रानियाँ। भगवान कृष्ण जो है कहीं दूर गए हुए थे, यमुना के पार थे, दूसरी तरफ में थे। दुर्वासा आए, बोले बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए हमें। 16,008 रानियाँ लग गई खाना बनाने के लिए, शिष्यों के लिए और दुर्वासा के लिए। दुर्वासा ने जम के खाया। खाने के बाद पूछा कृष्ण कहाँ है? भोजन वोजन हो गया, फिर पूछा कृष्ण कहाँ है? तुम लोगों ने खिला तो दिया हमें। तो बोले कृष्ण तो उधर है, जमुना के पार में है। तो बोले बुला उनको। तो बोलते भेजते हैं। तो आदमी क्या बोला, जमुना में तो बाढ़ आई हुई है, तो वी कैनॉट क्रॉस, कैसे जाएं उधर? तो दुर्वासा ने कहा कि तुम जाके नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जाकर कहो अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। कृष्ण जिनकी 16,008 बीवियां हैं। दुर्वासा ने कहा कि तुम जाके यमुना के तट पर कहो कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, देखो दे दिया, उधर पहुंचे जाके। फिर उन्होंने बताया कि आपको दुर्वासा मुनि बुला रहे हैं। तो बोले तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। तो फिर आए तो फिर बाढ़, फिर पानी है। फिर वो कृष्ण के पास पहुँचे, कृष्ण के पास पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि बाढ़ हम कैसे जाएं। तो बोले जाके तुम नदी के सामने खड़े होकर बोलो अगर दुर्वासा ने खाना नहीं खाया है तो रास्ता दे दो। दुर्वासा को 16,008 रानियों ने शिष्यों से ही सबको खिलाया और उसको जो है वो जाके बोले कि हाँ अगर दुर्वासा ने अगर नहीं खाया है तो रास्ता दो। रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। इसके पीछे रहस्य क्या है? दोनों में कर्तृत्व नहीं है, न कृष्ण में कर्तृत्व है उसके सारे कर्म अकर्म है, न दुर्वासा में कर्तृत्व है उसके सारे कर्म अकर्म। तो ये इसलिए आपको हमने ये कहानी वगैरह दी, बच्चे कितना काम करते हैं मगर कर्तृत्व नहीं है। दुर्वासा ने खाया, कृष्ण ने इतनी शादियां की मगर उसमें कर्तृत्व नहीं है, इसलिए उनके सारे कर्म अकर्म बन गए। अच्छा, हम लोग को विचार करना चाहिए हम कैसे अपने कर्म को अकर्म करें। हमारे जो काम में कर्म जितने भी हैं वो सब तो बांधते हैं हमें, बांधते हैं। ये हमारे नेक्स्ट जन्म के सब जो हैं कारक हैं, नेक्स्ट जन्म हमारे इस कर्मों के हिसाब से हमको मिलेगा। तो हमारे को अनुकरण किसको करना है? ज्ञानी को करना है। ज्ञानी के कर्म जो है हमारे लिए स्टैंडर्ड है। जैसे हॉर्स पावर को मापने के लिए ब्रिटिश हॉर्स पावर एक स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड हॉर्स पावर क्या है ब्रिटिश है ना? तो हम लोग के लिए स्टैंडर्ड क्या होगा? ज्ञानी ही स्टैंडर्ड है। तो हमें क्या करना है? संतोष थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम लोग में संतोष नहीं है, उसमें ज्ञानी में हमने अभी देखा ना उसकी एक क्वालिफिकेशन क्या है? नित्य तृप्त। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो तृप्त हैं, हमारे में संतोष नहीं है। तो क्या प्रयास करना चाहिए? थोड़ा सा संतोष और थोड़ा बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में कर्मफल के साथ में हमारा संग कितना है? बहुत ज़्यादा है। अब उस कर्मफल को, संग को थोड़ा हमको ढीला करना है, कर्म के फल के साथ में असंग ढीला करना है, आसक्ति को छोड़ना है। दूसरा, तीसरा, ज्ञानी निराश्रित है, जगत का सपोर्ट कम लेता है। हम लोग सबसे ज़्यादा जगत का सपोर्ट लेते हैं, भगवान का सपोर्ट नहीं लेते हैं। ज्ञानी पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित है, जगत का सपोर्ट कम लेता है। हमको भी धीरे धीरे अपना आश्रय शिफ्ट करना चाहिए, जगत से धीरे धीरे हमको भगवान की तरफ चलना चाहिए। और चौथा, बहुत कर्मठ होता है। ये एक किस्म का ज्ञानी है, जो ज्ञानी बहुत कर्मठ है। कर्मठ मतलब बहुत एक्टिव है, बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। अब अगला श्लोक जो है, ऐसा तत्वविद है, ऐसा ज्ञानी है जो निवृत्त मार्गी है, कुछ नहीं करता है। अच्छा, ये क्यों करता है? ये व्यक्ति क्यों करता है? सब चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते? ये इसलिए करता है कि क्यों उसकी जो वासना आगे की है वो वासना के अनुसार वो काम करता जाएगा। उसकी वासना के, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से मुक्त है वो तत्ववित है, वो ज्ञानी है, मगर वो कर्म अपनी वासना के अनुसार करता जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं विवेकानंद को, गुरुदेव को। अब दूसरे किस्म का जो कुछ नहीं करता है, उसके एग्जाम्पल होंगे ठाकुर रामकृष्ण, तपोवन महाराज। कभी नीचे आके उन्होंने ज्ञान यज्ञ नहीं किया, और नहीं ठाकुर रामकृष्ण ने जाके कहीं पर ज्ञान यज्ञ किया। मगर उन्होंने ज्ञान किसी को दे दिया और उसके बाद में सारे वर्ल्ड के अंदर प्रचार हुआ. नेक्स्ट लो.
निराशीर्यत चित्तात्मा,
निराशीर्यत चित्तात्मा,
त्यक्त सर्व परिग्रह,
त्यक्त सर्व परिग्रह,
शारीरं केवलं कर्म,
शारीरं केवलं कर्म,
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्,
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्.
निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रहः, शारीरं केवलं कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्.
ये दूसरे टाइप का महात्मा है, दूसरे टाइप का ज्ञानी है जो कुछ नहीं करता है. शारीरम केवलम कर्म कुर्वन ना अपनोति किल्बिषम. अच्छा, देखो जो भी कर्म हम अहंकार के साथ करेंगे, कर्तृत्व के साथ करेंगे, वो अपनी वासना छोड़ के जाएंगे. जब भी हम कर्तृत्व के साथ में करेंगे तो वो वासना बनेगी. जो कर्म करेंगे कर्मफल आएगा, कर्मफल हम लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे, राग द्वेष बन जाएगा, वासना बन जाएगी. अगर हम अहंकार रहित करें, एक अहंकार सहित हुआ, दूसरा अहंकार रहित हुआ, अहंकार रहित अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म जो है लाइक्स डिसलाइक या राग द्वेष या वासना नहीं बनते हैं. अच्छा, ये अहंकार का जन्म कैसे होता है, पहले तो अहंकार को हम समझ लें. अहंकार की डिफिनीशन क्या है? अहम कर्ता इति अहंकार, तत्वबोध में हम लोगों ने देखा है. अहम कर्ता, मैं डूअर हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं. तो ये अहंकार जन्म कैसे हुआ? अहंकार का जन्म हुआ है कि जब शरीर और मन आत्मा का तादात्म्य होता है तब अहंकार का जन्म होता है. तादात्म्य मतलब जब भी आइडेंटिफिकेशन होता है. क्या इसको हम रोक सकते हैं? नहीं, आप रोक नहीं सकते हो. जैसे सूर्य की किरणें जब समुद्र पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन होता है और उस ताप से बादल बन जाते हैं और वो बादल जो है सूर्य को ढक देते हैं. तो क्या ये तादात्म्य को आप तोड़ सकते हो? सूर्य है और पानी है, क्या उसका रिफ्लेक्शन को आप तोड़ सकते हो? नहीं कर सकते आप. उसी तरह से अनात्म वस्तु शरीर और मन के साथ में जब चेतन आत्मा का तादात्म्य होता है, जड़ चेतन का जब तादात्म्य होता है तब अहंकार का जन्म होता है. हम उसको अभी विच्छेद नहीं कर सकते. जैसे सूर्य है और पानी है तो रिफ्लेक्शन निश्चित है, उसी तरह से जब जड़ चेतन का संबंध होता है तो अहंकार का जन्म हो जाता है. ये क्यों हुआ? ये हमारे जो है अज्ञान के कारण हुआ. अज्ञान के कारण ये होता है. अज्ञान जब हट जाएगा तो ये भी चला जाएगा. तो ये अहंकार जीता कैसे है? अब एक बार अहंकार आ गया, इसका प्राण क्या है, कैसे ये जीवित रहता है? भविष्य की आशा, बराबर भविष्य की आशा, भविष्य में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, रिटायरमेंट करेंगे फिर ये होगा, प्लानिंग चलती रहती, भविष्य की आशा आशा आशा, एक के बाद एक आशा करता रहता है. और वर्तमान में जो परिग्रह है, वर्तमान का परिग्रह मतलब आपके पास जो अभी है, जितने रिटायर्ड लोग हैं अगर उन्होंने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो रोज सवेरे वो लोग इकोनॉमिक टाइम्स खोल के उसका मार्केट वैल्यू देखते हैं. ये पुरानी प्रथा थी, आजकल तो इंटरनेट हो गया है तो इंटरनेट में डाल देते हैं भाई दिस इज माय होल्डिंग, और रोज जो है आपको बता देगा आपके आज इतना हो गया, बढ़ गया. तो ब्रेकफास्ट टेबल पर आपने देखा वो बढ़ गया है तो आप कितने खुश हो. दूसरे दिन मार्केट क्रैश कर गया है, आप दुखी हो गए है? ये परिग्रह. तो हमारा अहंकार जीवित कैसे रहता है? एक तो आशा और दूसरा परिग्रह की चिंता करता रहता है, कितना है सुरक्षित है कि नहीं इसकी चिंता करते हैं। मगर ये कैसा है? ये है निराशी और त्यक्त सर्वपरिग्रह। इसकी आशा नहीं है कोई, अब कोई परिग्रह भी नहीं है। यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह निराशी निर्गत आशीष, कोई आशा नहीं है। यत चित्तात्मा, यत मतलब कंट्रोल, चित्त मतलब माइंड, आत्मा मैंने आत्मा मैंने शरीर। यहां देखो, यहां पर अगर आपको कोई नहीं बताया ना आपको समझ ही नहीं आएगा। यत चित्त आत्मा, चित्त मतलब माइंड। देखो यहां तो जो है ना डबल तो है, सिंगल तो होने से उसका मतलब क्या होता है? चेतन, चित्त, चित्त। यत यत मतलब कंट्रोल, चित्त आत्मा। सीधी बात है, आत्मा को क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये आत्मा वो आत्मा नहीं है जो हम जनरली जानते हैं। यत चित्त आत्मा का मतलब हुआ जिसने अपने चित्त अपने माइंड को, और आत्मा मतलब शरीर को, जिसने कंट्रोल कर लिया है, नियमन कर लिया है। यत चित्त आत्मा तख्त स्वर्व परिग्रह, फक्कर कुछ नहीं है बाद में। हमारे सांदीपनी पवाई में एक बार एक फक्कर महात्मा आए थे एक वेदांत कोर्स के टाइम में। न फोन है, न घड़ी है, न कुछ है। अब पंडित ब्रह्मचारियों को जो है उन्होंने लेक्चर दिया, जैसे घंटा खत्म हुआ फिर गायब चले गए। पक्कड़, कोई परिग्रह नहीं है, नथिंग। हम लोग अगर अब दो दिन के लिए बाहर जाते हैं कितना परिग्रह लेके जाते हैं, अपना पीलो तक लेके जाते हैं, परिग्रह कितना होता है। और इनके पास में, सन्यासी लोग के पास में कोई परिग्रह नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है। शरीरम केवलम कर्म, ऐसे व्यक्ति में अहंकार नहीं है क्योंकि ये ज्ञानी है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ज्ञानी है वो, ज्ञानी है इसलिए अहंकार नहीं है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है? चेतन प्लस अहंकार इजकल टू जीव, जीव माइनस अहंकार इजकल टू, याद रखना होगा, सब छोटे छोटे फॉर्मूला है। तो ज्ञानी है इसका मतलब अहंकार नहीं है, ज्ञानी है इसका मतलब अहंकार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को वो कर्म करता है किस चीज लिए? केवल शरीर को बचाए रखने के लिए, शरीर के यापन के लिए केवल कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं उसकी कोई वासना नहीं बनती है क्योंकि अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। देखो आप सोए हो, आपके साथ में आपका लड़का सोया हुआ है, और आपको जो है करवट बदल के लात मारने की आदत है, फटास करके आपने लड़के के ऊपर मार दिया एक, तो वहां आपका अहंकार नहीं है। डीप स्लीप के अंदर, सुसुप्ति के अंदर में अहंकार नहीं रहता है क्योंकि मन बुद्धि नहीं है, तो इसलिए उसका कोई कर्मफल नहीं होगा। तो अहंकार रहित अगर कोई कर्म हो तो उसकी कोई वासना नहीं बनती, और अहंकार सहित कर्म होगा तो उसकी छाप पड़ जाती है, उसकी वासना पड़ जाती है। कुर्बन ना अपनोति कल्विशन, तो ज्ञानी ऐसे कर्म करते हुए भी कोई पाप या पुण्य नहीं इकट्ठा करता है, कोई पाप पुण्य नहीं है उसका। क्यों नहीं है पाप पुण्य नहीं है? क्योंकि वो अकर्ता है, क्योंकि वो अकर्ता है। क्यों वो अकर्ता है? क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी है मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब क्या हुआ? ब्रह्म अकर्ता है, इसलिए वो भी अकर्ता है। इसलिए उसके कर्म जो भी किए हैं अहंकार रहित किए हैं, इसलिए कोई पाप पुण्य नहीं है, उसको नहीं मिलेगा। मगर उसके अंदर जो भी कर्म के पाप पुण्य तो कुछ तो आएंगे, कौन लेगा? तत्वबोध। जो ज्ञानी की सेवा करते हैं उनको उनके ज्ञानी के पुण्य मिलेंगे, और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनको क्या मिलेंगे? ज्ञानी के पाप मिलेंगे। गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। एक म्यूजिशियन वायलिन बजा रहा है, हैं, मगर सुर उसमें अच्छा नहीं आ रहा है, तो दोष किसका है? वायलिन का है कि बजाने वाले का है? बजाने वाले का है। उसी तरह से ज्ञानी का शरीर क्या है? वो करण बन गया, इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कर्ता से अकर्ता की यात्रा करण के थ्रू है। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है। तो ज्ञानी का शरीर क्या है? मतलब इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई वायलिन ठीक से नहीं बजा रहा है तो दोष क्या वायलिन को दोगे कि बजाने वाले को दोगे? बजाने वाले का दोष है, वायलिन ठीक है, यंत्र ठीक है। भगवान कैसे उस यंत्र को चलाते हैं, वो भगवान का है। कभी अच्छे कर्म कराते हैं, कभी खराब कर्म करा लेते हैं, भगवान की इच्छा है। जैसे पराशर मुनि के मन के अंदर काम वासना आ गई, सत्यवती के साथ में उनका संभोग हो गया, जन्म किसका हुआ? वेद व्यास का। तो आप दोष क्या पराशर मुनि को दोगे कि जो नियंता जिसने वो सोचा था वेद व्यास का जन्म कैसे हो, किसके थ्रू कराएं? भागवत के अंदर दीति और कश्यप का आता है, दीति कश्यप, कश्यप मुनि है, दीति उनकी पत्नी है। एक शाम के समय उनके अंदर काम वासना आ गई, और इतनी जबरदस्त काम वासना कि उसके पति उस टाइम में संध्या बंदन करते तो उनको पकड़ के ला के बोलती है कि नहीं, हमको तो आपके साथ में अभी संभोग करना है। उन्होंने बोला ये राइट टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करो। नहीं सुना, रिजल्ट ये हुआ कि उनके जो पुत्र हुए क्या था, वो हिरणाक्ष एंड हिरण्यकश्यप। अब वो कैसे हुए? उसके पीछे प्रेरक कौन था? नारायण। जय विजय को आना है, जय विजय को दीति के गर्भ में आना है। तो कई बार जो है भगवान की इच्छा होती है। मैं इस वास्ते आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हर टाइम जो है आप लोग लोगों को दोष नहीं दे देना कि ये संत आदमी है, ये ज्ञानी आदमी है, ये कैसे क्या हो गया। ये वो इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, आशा क्या है? आशा देखो, हम सुरक्षा और खुशी के लिए दूसरे शहर में जाते हैं इस आशा से कि वहां हमें सुरक्षा मिलेगी, खुशी मिलेगी, ऐसा हम सोच के जाते हैं। एक छात्र की आशा होती है परीक्षा में जा रहे हैं कि हम पास कर जाएं। एक कंपनी के मैनेजर की इच्छा होती है कि हमने प्रोजेक्ट लिया है, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, ये उसकी आशा है। एक मरणासन्न व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी भी आशा है और थोड़े दिन जी लें। ब्रह्मचारी क्या सोचता है कि हमने पास किया है, अब जाएं जरा फील्ड के अंदर, लोग हमारे जो है, लोग हमारे जो है उसके अंदर में डिस्कोर्स में आए हैं, और बीच में उठ के ना जाए इस वास्ते वो फेविकोल लगा देता है, जो बैठा है उठ के ना जाए, और उसके बाद में फिर सोचता है कि गुरु दक्षिणा भी अच्छी आनी चाहिए। बोलो, आशा, ये है आशा। ज्ञानी क्यों निराशी है? नित्य तृप्त है, श्लोक में ही बता दिया, क्योंकि वो नित्य तृप्त है और एकांत में रह के वो शरीर और मन को उसने नियमन कर लिया है, और केवल उसी के लिए ही वो उठता है और नहीं उठता है। अच्छा, उसके संबंध में और भगवान कहते हैं, यहाँ पर शंकराचार्य जी बताते हैं, जिसने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया। समस्त संग्रह, ज्ञानी के पास में, सन्यासी के पास में कोई संग्रह नहीं होता, सब संग्रह परित्याग है। ऐसे सन्यासी के पास में शरीर निर्वाह के कारण रूप अन्नादि का संग्रह नहीं होता। शंकराचार्य जी युक्ति देते हैं कि वो सेव करके नहीं रखता, उसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, हाँ, ये सेव करके रख लो, कल क्या खाओगे, ऐसा नहीं है। अन्न का भी संग्रह नहीं है। सर्वग्रह परित्याग का मतलब कल क्या आएगा, कहाँ खाना मिलेगा, उसकी भी उसको चिंता नहीं है। इसलिए उसको याचना दी द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इसलिए अब उसको क्या करना है, भिक्षा लेना है। याचना, याचना मतलब भिक्षा लेना है, भिक्षा छोड़कर और कोई उपाय नहीं है उसके लिए। इस पर बिना याचना किए, बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से शास्त्र में सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अन्न आदि की प्राप्ति के द्वारा बतलाए गए हैं उनको प्रकट करते हैं। अब जो बताते हैं कि उसको कैसे मिलता है, खाना कैसे मिलता है, वो कैसे संतुष्ट रहता है, वो बता रहे हैं।
यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालावसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते
यदृच्छालावसन्तुष्टः। यदृच्छालाभ, बिना कुछ मांगे जो मिल जाए उससे संतुष्ट है, मांगना नहीं है। अच्छा, ये निवृत्ति मार्गी है, ये बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं करता है, ये अपनी हिमालय की गुफा के अंदर चुप से बैठा हुआ है। जो मिल जाए वो अच्छा है, और ये जानता है कि जो भी आ रहा है प्रारब्ध के कारण आ रहा है। हमारे प्रारब्ध में जो है, जैसा हमने काम आगे किया है उसके हिसाब से भगवान कर्मफल हमको देते रहेंगे। तो अगर धोती फटी है तब भी संतुष्ट है, कोई नई धोती दे गया तब भी संतुष्ट है, खाना आ गया तब भी संतुष्ट है, खाना नहीं आया तब भी संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, मगर संतोष है उसको, संतुष्ट है, कंटेंटेड है। अच्छा, कैसे वो संतुष्ट हुआ, क्योंकि अभिमान नहीं है। अभिमान क्यों नहीं है, अभी अशोक जी ने बताया, क्योंकि ज्ञान आ गया। क्योंकि ज्ञान आ गया इसलिए वासना नहीं है, वासना नहीं है इसलिए कामना की कोई, प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए संतुष्ट है। ये आपको विज्ञान बराबर जानते रहना, खाली बोल दिया संतुष्ट है ऐसे जानने से नहीं होगा, क्यों संतुष्ट है आपको समझना होगा, उसको साइंस है उसके पीछे, तो वो संतुष्ट है। यहाँ भज गोविंद में आता है, रथ्या चरपटी विरचित कंथ है, पुण्या पुण्य विवर्चित पंथ है, योगी योग नियोजित चित्त है, रमते बालो उन्मत्त। क्या पहना हुआ है, कंथा। कंथा मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है, एक समय में कंथा साड़ी बहुत पॉपुलर थी। कंथा साड़ी मतलब टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के साड़ी बनानी है। तो आगे के ज़माने में दर्जी लोग काट के ना कपड़ा, जो कोई काम नहीं आता था उसको फेंक देते थे। तो ये जो है ज्ञानी उसको पकड़ के ला के उसको सिलाई करके वो कंथा बना लेता है, बना के रथ्या चरपट। रथ्या मतलब रास्ते के अंदर वो पड़े हुए थे कपड़े। विरचित कंथ है, पुण्या पुण्य विवर्चित पंथ है। और उसका पंथ कैसा है, पुण्य अपुण्य कुछ नहीं है, उसके कर्म तो अकर्म है, उसको न पाप है न पुण्य है। योगी योग नियोजित चित्त, मगर उसका कहाँ योग है, मन कहाँ है, भगवान के पास, भगवान में लगा हुआ है। रमते बालो उन्मत्त एवा, और कैसे रमन कर रहा है, बालक की तरह, एज ए चाइल्ड, इनोसेंट। अया उन्मत्त, पागल लगेगा, लोग कहेंगे तो पागल है। और यह पिशाच कहते हैं, अकेला अकेला है, अकेले रहता है, पिशाच की तरह है। उसका मन शुद्ध है, पूर्ण नियंत्रण है, जो उसको मिला उससे वो सुख में है और संतुष्ट है। हम सुख पाते हैं कुछ मिलने पर, मैं संतुष्ट नहीं होते, कभी संतोष नहीं आता है। अच्छा, द्वंद्वातीत विमत्सर, द्वंद्वातीत द्वंद्व से अतीत चला गया। द्वंद्व क्या है, पेयर ऑफ ऑपोजिट, क्या क्या है आप द्वंद बताओ कुछ। शीत उष्ण है, मान अपमान है, सुख दुख है, और जय पराजय है, जितने किसी के द्वंद हो सकते हैं वो द्वंद अतीत है, द्वंद अतीत कैसे हुआ द्वंद अतीत, द्वंद कहाँ आते हैं, कहाँ आप द्वंद का अनुभव करते हो, जय पराजय सुख दुख शीतोष्ण कहाँ पर आते हैं, मन में आते हैं है? और ये कौन व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ज्ञानी। ज्ञानी कैसे बना वो, ज्ञानी वो बना है कि जब मन के पार गया है तब वो ज्ञानी बना। मन के अंदर ही सब आते हैं ना द्वंद्व, आपको अगर समाधि में पहुंचना है निधि ध्यासन करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मन के थ्रू आपको जाना है, मन को ट्रांसेंड करना है। मन को ट्रांसेंड करना है मतलब मन के सारे द्वंद्व चले गए ना, इसलिए वो द्वंद्वातीत है। अब आ गया समझ में आपको कैसे वो द्वंद्वातीत हुआ, क्योंकि मन के बियॉन्ड चला गया है, द्वंद्वातीत है और उसके अंदर तितिक्षा भी है। तो तितिक्षा का हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि के अंदर हम लोगों ने देखा था, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निदिग्ध्यते। तितिक्षा किसको कहते हैं, तितिक्षा कहते हैं कि जो भी सर दुख आए अप्रतिकार पूर्वकम, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो जानता है हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं सब, कैसे सहन करता है, चिंता विलाप रहितम, उनके बारे में चिंता नहीं करता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये दुख क्यों आए हैं, टीचर ने कुछ गंदे काम किए हैं, शिक्षक ने किए हैं, अरे नहीं हमने किए हैं गड़बड़ काम किसने किए हैं, हमने किए हैं, तो दुख किसको मिलेगा। अब मिलने के बाद में अब चिंता मत करो, उसका विलाप नहीं करो, हम तो रोते हैं जब दुख आता है। और ये ज्ञानी कैसा है, उसके अंदर तितिक्षा है, चिंता विलाप रहितम, बिना देखो छोटे बच्चे जब बहुत छोटे, अच्छा चलना कब सीखते हैं, 11-12 महीने में, अच्छा तब भी उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता है, अगर कुछ कपड़े नए भी पड़े हों और वहाँ पर 10 व्यक्ति भी बैठे हों तो वो बच्चा वहाँ दौड़ता है, इज इट नॉट सो। वो देखो उसको मन के बाहर है, वो उसको कोई अपने शरीर का भान नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं सेम सेम, इज इट नॉट सो, बच्चे को अपने कोई भान नहीं है, उसका मन नहीं है वहां। दूसरे लोग उसको कहते हैं अरे ये क्या है, तुमने वस्त्र नहीं पहने हैं, कपड़े नहीं पहने हैं, उसको सिखाते हैं। वो तो द्वंद्वातीत है, माइंड कहां है उसका, विमत्सरा निर्भैर, निर्भैर मतलब जो मिले उससे कोई घृणा नहीं है, क्रोध नहीं है किसी से, जो मिल गया ठीक है, निर्भैर, क्योंकि मन उपलब्ध नहीं है। सम सिद्धाव असिद्धो, सिद्ध असिद्ध जो भी मिल गया उसके अंदर सम है। अच्छा कृत्वापि न निबद्धते, क्योंकि कर्ता भाव नहीं है इसलिए बंधन नहीं है, कृत्वापि मतलब कर्म करते हुए भी वो बंधता नहीं है, क्यों नहीं बनता है, कर्तित्व नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव आ जाएगा तो बंधन हो जाएगा। देखो समस्या कर्म में नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लो, समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्तित्व में है। कर्म अकर्म विकर्म तीनों के अंदर कर्तित्व जो है वो पॉइजन है। अगर हम कर्म करते हैं तब भी कर्तित्व आ गया, कर्म नहीं करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं तब भी कर्तित्व आ गया, हम निषिद्ध कर्म करते हैं तब भी कर्तित्व आ गया। तो कर्तित्व जो है को हटाना है, कर्तित्व के कारण हमको दुख होता है। हमने दो किस्म के ज्ञानी देखे, दोनों ज्ञानी जो है में कर्तृत्व नहीं है, डुअरशिप नहीं है।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञानावस्थित चेतस, उसका मन कहाँ है? चेतस ज्ञान के अंदर अवस्थित है, सब समय जो है भगवान के साथ में उसका मन है। देखो उसको नित्य अनित्य का विवेक है, उसको कर्म अकर्म विकर्म का भी तत्व मालूम है, ब्राह्मण अकर्ता है ये भी उसको मालूम है, ये उसके पास में ज्ञान है। कर्म के अंदर अकर्म देखना मतलब आत्मा को देखना मतलब अकर्ता को देखना, ये ज्ञान उसके पास में है। और दूसरा मन स्वाभाविक रूप से हम लोग का कहाँ जाता है? विषयों की तरफ जाता है। हर वृत्ति के अंदर विषय होता है, जितनी भी हमारे वृत्ति आती हैं हर वृत्ति में एक न एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, सारे विषय होते हैं इसके अंदर। और ये कब होते हैं? मोह की अवस्था में होते हैं। मन बार बार बाहर जाता है, कभी भीतर नहीं जाता है। भीतर जाने का मतलब मन का प्रकाशक जो है उसकी तरफ नहीं जाता है। मन हमारा कभी भी वृत्ति का जो प्रकाशक है उसकी तरफ में कभी नहीं जाता, मगर ज्ञानी का मन विषय आसक्त नहीं है। अज्ञानी का मन विषयों के साथ में आसक्त है, विषयों के साथ है। और ज्ञानी विषय आसक्त नहीं है। दूसरा मुक्तस्य में से उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसलिए मुक्त है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रहने से आप बंधन में हो, अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो आप मुक्त है। ये कैसे मुक्त हुआ? विषयों के साथ संग नहीं है। उसने संग किसके साथ किया? आत्मा से। दो ही तो चीजें हैं, एक आत्मा एक अनात्मा। अज्ञानी जो है अनात्मा के साथ में संग करता है और ज्ञानी आत्मा के संग करता है। तो हम लोग सब अज्ञानी लोग जो है अनात्मा के साथ में संग करके बैठे हुए हैं और वो आत्मा के साथ में, इसलिए वो मुक्त है। देखो हम लोग कैसे देखते हैं ना कि देखो आपने कभी देखा है सिल्क का वॉर्म का कोकून देखा है? किसने बनाया? वॉर्म ने नीचे अपने ही बनाया, वो अपने सिलेबस से ही अपने चारों तरफ ऐसे बांधता रहता है। और फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि वो निकल नहीं पाता, उसमें से बन जाता है। हमने तो सिल्क वॉर्म देखा नहीं है भाई, कैसे समझे? अच्छा आप समझ लो, मान लो आप इस चेयर पर बैठे हो, चेयर पर बैठ के आप अपने आप को रस्सी से बांधते हो। अब उसके बाद बताओ, बांधने के बाद में आप क्या स्वतंत्र हो, इस रूम में घूमने लायक हो? नहीं, बंध गए आप। ठीक उसी तरह के से हम कर्तृत्व के साथ में जो भी कर्म करते हैं वो चेयर में बैठ कर रस्सी बांधते हैं, उसी की तरह हम बंध जाते हैं। कर्तृत्व नहीं हो तो फिर हम स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। उपनिषद में आया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। सुना आपने कभी? सुना हुआ लगता है ना?
नहीं
सुना। सुना आपने? किस उपनिषद का है? जमुनोत्री में पढ़ाया किसी ने आके?
बोधात्मन
ये भी बता देते। अब बताओ तो उपनिषद का नाम
कौन सा उपनिषद?
राइट, अमृत बिंदु उपनिषद के अंदर ये आया है। क्या है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मन जो है यही कारण है बंधन और मुक्ति का। कर्तृत्व है तो बंधन है, कर्तृत्व नहीं है तो मुक्ति है। संघ है तो बंधन है, संघ नहीं है तो मुक्ति है। बंधाय विषयासक्तम, अगर आप विषयों के साथ में आसक्त हो, विषयों के साथ में आसक्त हो मतलब अनात्मा के साथ में अगर अटैच्ड हो तब क्या है, बंध गए। और मुक्तम निर्वशयम स्मृतम, आप विषयों के साथ में संग नहीं है आपका, ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते हैं कि आप विषयों को भोग नहीं करो, ऐसा नहीं कहते हैं, मगर वो केवल बोलते हैं संग मतलब उसके साथ में नहीं होना चाहिए। ये ज्ञानी कैसा है, कर्मफल आसक्ति रहित है, विषयासक्ति रहित है, उसे तो चाहिए नहीं कुछ, उसको अपनी कामना तो पूर्ण नहीं करनी है। क्यों नहीं उसको अपनी कामना पूर्ण करनी है, क्योंकि वासना नहीं है, वासना नहीं है। विषयों की आसक्ति क्यों नहीं है, निराश्रित है वो, आश्रित किसके ऊपर है, भगवान पर आश्रित है। पीछे श्लोक में ही हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ज्ञानी कैसे कर्म करता है, तो कहते हैं यज्ञाय आचरतः कर्म, उसके सारे कर्म यज्ञ रूपी होते हैं। आपने यह यज्ञ वर्ड सुना है कि कहाँ सुना है, तीसरे अध्याय में आया था, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म वंदना, यज्ञ रूपी छोड़कर जो भी कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे बंधन रूप के होते हैं, बांधते हैं हमें। यज्ञ का क्या मतलब था वहाँ, यज्ञो वही विष्णु, तो अगर जो भी कर्म विष्णु की प्रियता के लिए नहीं होंगे वो कर्म हमको बांधेंगे, तो हम विष्णु की प्रिय मतलब या ईश्वर की प्रीति के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं क्या, बताओ क्यों डरते हो भाई, बताओ ना, नहीं करते हैं, तो इसलिए आप बंधते जाओगे। जिस दिन से आप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना शुरू करोगे उस दिन से वो कर्म आपको नहीं बांधेंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, ये भी आपने सुना है, वहां यज्ञ का मतलब था ड्यूटी। देखो यज्ञ के डिफरेंट मीनिंग हम बता रहे हैं आपको, हालांकि ये सब आपको हमें बताने चाहिए। यज्ञो वही विष्णु, तृतीय अध्याय में हमने देखा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा ये भी हमने आगे देखा है, यहाँ यज्ञ माने ड्यूटी। मगर यज्ञाय आचरत कर्म, यहाँ पर यज्ञ का मतलब क्या है, यहाँ यज्ञ का मतलब है लोक संग्रह, वो जितने भी काम करता है वो यज्ञ रूपी होते हैं, यज्ञ रूपी होते हैं मतलब लोक संग्रह के लिए होते हैं। लोक संग्रह का मतलब क्या हुआ, कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। लोगों को सही रास्ता दिखाने का मतलब क्या है, कि तुम अनात्मा में मत डूबो, आत्मा की तरफ चलो, ज्ञान की तरफ चलो, क्यों अज्ञान में बैठे हुए हो, दुखी क्यों हो रहे हो, हम लोग सब अनात्मा में बैठे हुए हैं इसलिए दुखी होते हैं। दुख कौन देता है, आत्मा देता है, फिर भी देखो हम लोग अनात्मा में बैठे रहते हैं। तो महात्मा लोग कैसे समझाते हैं, बोले संसारी आदमी कैसा होता है, सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस घुस देखे, फिर बाद में तमाशा देखने के लिए चला जाता है, बार बार अनात्मा से उसको दुख मिल रहा है मगर फिर अनात्मा में जाता है। एक महात्मा ने कहा कि एक आदमी को उसका जो है ग्रैंड सन अपने जूते से पीट रहा था, ग्रैंड सन बीटिंग ग्रैंड फादर, पीट रहा था, तो महात्मा जा रहे थे, बोले कि आपकी तो उम्र हो गई हो, चलो आपका तो पोता आपको मार रहा है, मेरे साथ आश्रम चलो। पता क्या कहा उसने, महात्मा जी आपको ये सुख कभी नहीं मिला, आपको क्या मालूम है ये जूते खाने में क्या सुख है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। इसीलिए कहते ना, सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस घुस देखे, बार बार वहां जाता। पुराने जमाने में हम लोग यज्ञ करते थे, जितने भी यज्ञ होते थे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होते थे। अब जो है यज्ञ तो करने का सिस्टम नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे, न मंत्र मालूम है, न यज्ञ की सामग्री का पता लगता है, अब हमें क्या करना है, कर्म के द्वारा यज्ञ करना है, अब हमको अपने कर्मों के द्वारा यज्ञ करना है। कर्मों के द्वारा यज्ञ करना मतलब क्या हुआ? या तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, या अपने कर्तव्य कर्म करो, या लोक संग्रह करो। लोक संग्रह मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाओ। तीनों यज्ञ हुए। समग्रम प्रविलियते, समग्रम मतलब सम मतलब सामने जो आने वाले हैं, सह अग्रम मतलब सामने आने वाले। सामने आने वाले कर्म के बाद में क्या आता है? कर्म फल आता है। इज इट नॉट सो? कर्म फल कर्म के पहले आता है ना बाद में आता है? बाद में आता है। तो समग्रम मतलब सम में सह, अग्रम में जो सामने आएगा। समग्रम प्रबलीयते, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, उसका कोई कर्मफल आता ही नहीं है। तो वो कर्म करता है मगर वो कर्म किसी किस्म का कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ के जाते, कोई किस्म का इम्प्रेशन नहीं छोड़ के जाते। मतलब जैसे पक्षी लोग जब जाते हैं तो उनके पदचिन्ह आपको नज़र आते हैं कभी? नहीं आते हैं। मछली जब पानी में तैरती है तो उसके पदचिन्ह नंबर समझ में आते हैं कहाँ से कैसे गई, मगर हम मिट्टी पर चलते हैं तो पदचिन्ह नज़र आते हैं। वैसे इसके कर्म कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते, पदचिन्ह मतलब कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ते हैं। किसके कर्म? ज्ञानी के कर्म। कैसे करता है? अहंकार रहित अकर्ता भाव से करता है। कर्म करता है कि नहीं करता है? करता है। क्या वो अनात्मा के ऊपर आश्रित है? नहीं है। क्या वो तृप्त है? तृप्त है। ऐसे आपको कर्म करने चाहिए। अब हम अपने सारे कर्मों को कैसे दिव्य बनाएं? अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम्। इसको हम अगले दिन देखेंगे। इसका मीनिंग अगर जानना होगा तो आपको आना होगा अगली क्लास में। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः।
हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।